राघव मित्तल इस वक्त अभिमन्यु की मॉम अंजलि चौहान के सामने उनके केबिन में बैठा हुआ था। अंजलि एक न्यूरोसर्जन थी। राघव ने अंजलि को अभिमन्यु की दिल्ली आने के बारे में बताया, साथ ही वो उनसे ये जानना चाहता था कि क्या अंजलि भविष्य में अभिमन्यु के साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहेंगी या नहीं। ये बात नहीं थी कि अंजलि को अभिमन्यु की नफ़रत के बारे में पता नहीं था। राजवंश फैमिली कोई आम फैमिली नहीं थी, वो बिज़नेस वर्ल्ड में अपना नाम रखती थी और सब जानते थे कि अभिमन्यु का दिल्ली जाकर बिज़नेस ना करने का कारण क्या था। अंजलि के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देखकर राघव ने धीमी आवाज़ में कहा, आंटी, वो आपका बेटा है और आपको इतना रूड नहीं होना चाहिए, आपने ही उसे पैदा किया है। राघव की बात सुनकर अंजलि ने सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बेरुखी से कहा, राघव, तुम जो बोल रहे हो ये तुम्हारे वर्ड्स नहीं हैं। क्या लगता है तुम्हें मैं बेवकूफ़ हूँ जो मुझे ये समझ नहीं आएगा कि जिस इंसान को ठीक से खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, वो पिछले 3 घंटे से मेरा वेट कर रहा है ताकि मुझे मेरे पास लेक्चर दे सके। अंजलि का स्वभाव और ऑरा काफ़ी हद तक अभिमन्यु की तरह था, बिल्कुल ठंडा। राघव को लगा कि वो इमोशनल होकर कुछ कहेगा और अंजलि उसकी बातों में आ जाएंगी, पर ऐसा नहीं था। अंजलि काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान थी। राघव ने अपने दोनों हाथ उठाए और शांत लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, आप समझ ही गई हैं तो इस मामले में कुछ करती क्यों नहीं। आपसे ज़्यादा मॉम आपके लिए परेशान रहती है। हम गोवा गए थे और मेरा राजवंश एम्पायर के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर कोलैब हुआ है, इस दौरान हम उससे मिले थे। तुम किसके साथ बिजनेस करते हो या किसी से मिल रहे हो, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस, अंजलि ने हल्के गुस्से में कहा। फिर उसने घड़ी की तरफ इशारा करके कहा, आई एम गैम श्योर तुम्हारे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं होगा, सो जाकर अपना काम करो, मुझे भी एक और सर्जरी के लिए निकलना है। वन मोर थिंग, बिजनेसमैन हो तो अपने टाइम को मनी की तरह इन्वेस्ट किया करो, ना कि अपनी मॉम की बातों में आकर उल्टा सीधा ज्ञान देने के चक्कर में टाइम वेस्ट करो। अंजलि के इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी राघव खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। अंजलि को देखकर लगता नहीं था कि अभिमन्यु उसका बेटा है। उसके दिल में अभिमन्यु के लिए ज़रा भी फीलिंग्स नहीं थी। राघव के दिमाग में क्या चल रहा था ये अंजलि को समझने में देर नहीं लगी। अंजलि ने गहरी सांस ली और राघव से कहा, लिसन राघव, मुझे और लेक्चर नहीं सुनना है कि उस इंसान को मैंने पैदा किया है फिर भी मुझे उससे नफरत क्यों है। मेरे दिल में उसे लेकर सिर्फ एक ही जज्बात है और वो है सिर्फ और सिर्फ नफरत का। वो लड़का मेरे साथ की गई ज़बरदस्ती की निशानी है। ना तो मैं उस शादी में इन्वॉल्व होना चाहती थी और ना ही उसके बाप के साथ। लेकिन इन सब में उसकी क्या गलती है ये भी बता दीजिए। यहाँ आप उससे प्यार नहीं करती, वहाँ आपके सो कॉल्ड एक्स हस्बैंड उसे बेटे का दर्जा नहीं देना चाहते। शुक्र है जो दादी उसके लाइफ में है, वरना अब तक पता नहीं अभिमन्यु जिंदा भी होता या नहीं, राघव ने गुस्से में कहा। राजवंश फैमिली कैसी थी ये पिछले दिनों उसकी नज़रों में आ गया था। उसे अभिमन्यु के लिए बुरा लग रहा था, तभी वो नैना की बात मानकर अंजलि से मिलने के लिए आया था। वरना नैना ने तो पहले भी इस काम के लिए राघव को अंजलि के पास भेजने की कोशिश की थी, पर उसने कभी हाँ नहीं की। राघव को लगा कि अभिमन्यु के बारे में सुनकर शायद अंजलि के दिल के कोने में कोई छुपी हुई फीलिंग्स होगी तो वो बाहर आ जाएंगी, पर अंजलि का चेहरा अभी भी बिना किसी भाव के उसी तरह बैलेंस्ड था। अंजलि वहां से उठी और राघव की आंखों में देखते हुए बोली, तुमने कहा ना उसकी दादी है उसके लिए, तो फिर मेरी क्या जरूरत है। वैसे भी मैं मिसेज राजवंश को जानती हूँ, वो बहुत अच्छी औरत है, उन्होंने अपने पोते को काफी अच्छे से संभाला होगा और उसका हक भी उसे जरूर दिया होगा। बाकी आगे से मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे सामने गलती से भी उसका जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे जख्म फिर से हरे हों। बहुत मुश्किल से मैं उस टॉक्सिक शादी से बाहर निकलकर इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई अपना मुझे फिर से पीछे धकेल दे। राघव को अच्छा खासा सुनाने के बाद अंजलि वहाँ से चली गई। वहीं राघव अभी तक वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने गहरी सांस लेकर अपने मन में कहा, मॉम बिल्कुल ठीक रहती हैं, आंटी बहुत ज़िद्दी हैं। वो नहीं जानती कि वो जिस लड़के को अपना बेटा तक मानने से इनकार करती हैं वो उन्हीं का साया है। वही ज़िद, वही गुस्सा और ठीक यही ऑरा। कोई बात नहीं, अगर एक जगह पर हैं तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। शायद इस बार आंटी के बजाय अभिमन्यु अपनी तरफ से पहल करे। राघव वहां से उठकर चला गया। अंजलि से कोई भी उम्मीद लगाना बेकार साबित हुआ। वहां से बाहर निकलकर उसने नैना को कॉल पर सब बताया तो उनका भी चेहरा उतर गया था। नैना ने उदास चेहरे के साथ कहा, मुझे लगा उसने अपनी पत्नी को खोया है तो शायद माँ का प्यार उस दर्द को थोड़ा कम कर सके, लेकिन नहीं, अंजलि आज भी उतनी ही गुस्से में है। खैर वो ना सही, लेकिन मैं तो मिलने जा ही सकती हूँ, साथ में किया को ले जाऊंगी ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं अभिमन्यु से रिश्ते के चलते वहां पर आई हूँ। नैना ने अभिमन्यु से मिलने का सोचा, इसके लिए उन्होंने गौतम को भी तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ शाम के वक्त इशिका चौधरी हाउस में पहुंच चुकी थी। युविका उस वक्त रूही के साथ थी, उसने रूही को सुलाया ही था। घर में बिल्कुल शांति थी, ऐसा लग रहा था जैसे युविका की फैमिली किसी वजह से बाहर गई हुई है। इशिका वहां पहुंची तो उसे हाउस हेल्पर सीधा गेस्ट रूम में ले गया जो रूही और इशिका के लिए तैयार किया गया था। इशिका को देखते ही युविका मुस्कुराकर उसके पास आई और गले लग गई। थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए, मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगी। इतनी देर में मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, युविका ने थोड़े इमोशनल टोन में कहा। इशिका मुस्कुराकर उससे अलग हुई। उसके घर में कोई नहीं था, ये देखकर इशिका को थोड़ा अजीब लगा था, तो उसने पूछ ही लिया, तुम्हारी फैमिली नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ है? वो मेरी रिलेटिव की शादी के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हैं, उन्हें आने में एक हफ्ते का टाइम लग जाएगा, युविका ने जवाब दिया। फिर इशिका का मूड सही करने के लिए वो हंसते हुए बोली, ये पूरा एक हफ्ता हमारे लिए है, हम जमकर चिल करेंगे, वरना तुम जानती हो ना, मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है और बिजनेस माइंडेड भी, वो यही चाहती हैं कि मेरा ध्यान बस काम पर रहे। ऐसा समझ लो, एक हफ्ते के लिए जेल से आज़ादी मिल गई। इशिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद उसकी जगह ईशानी होती तो आज ज्यादा एंजॉय करती। युविका का नेचर ही काफी हैप्पी गोलाकी टाइप का था। रूही की नींद डिस्टर्ब ना हो ये सोचकर युविका इशिका को अपने रूम में ले गई। वहां आते ही युविका ने अपनी नाक से कोड़कर कुछ सूंघने लगी। फिर उसने शरारती नजरों से इशिका की तरफ देखते हुए कहा, वैसे कहाँ गायब थे तुम मैडम? तुम्हारी बॉडी में से एक महंगे और रेयर क्वालिटी के परफ्यूम की स्मेल आ रही है। इस तरह का परफ्यूम तरुण कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे बताओ कौन है वो जो इतना शानदार परफ्यूम लगाता है? युविका की बात सुनकर इशिका के गाल लाल होने लगे थे। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस युविका नोटिस ना कर पाएं। इशिका ने आंखें बंद की तो उसके सामने अभिमन्यु का चेहरा घूमने लगा और वो सभी लम्हे जो थोड़ी देर पहले उसने अभिमन्यु के साथ बिताए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु का एहसास अभी भी इशिका के साथ था, वो खुद में ही सिमटने लगी।
इशिका के कुछ ना बोलने पर और इस तरह चेहरा दूसरी तरफ करने पर युविका जल्दी से उसके सामने आई और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, इस तरह नजरें चुराने से नहीं होगा। वैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जो तुम उस इडियट को छोड़कर किसी और के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन अपनी इकलौती फ्रेंड को नहीं बताओगी क्या कि कौन है वो खुशकिस्मत इंसान? वैसे मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है, फिर से मेरी फ्रेंड को कोई मुझसे छीन कर ले जाने वाला है। इशिका ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया और उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं किसी काम से शॉपिंग मॉल गई थी और वहाँ परफ्यूम वाले एरिया में मैंने ये ट्राई किया था। अब झूठ भी मत बोलो, ऐसा परफ्यूम खास ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है, ना कि ऐसे ही किसी शॉपिंग मॉल में परफ्यूम वाले एरिया में तुम्हें दिख जाएगा। सीधा सीधा कहो ना, बताना नहीं है, युविका मुंह बनाते हुए बोली। वो उसे झूठी नाराजगी दिखा रही थी। इशिका बिल्कुल शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युविका को क्या जवाब दे। वो तो युविका के बारे में ठीक से जानती भी नहीं थी। युविका को परफ्यूम के बारे में इतनी नॉलेज थी, इसका मतलब उसे खुशबुओं से खास लगाव था। इशिका की खामोशी का मतलब युविका ने कुछ और ही निकाला। वो उसके पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई, मुझे तुम्हारे चेहरे पर मायूसी अच्छी नहीं लगती है, और मुझे तो खुशी ही होगी अगर तुम किसी के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का सोचो। बस वह लड़का तरुण की तरह टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इशिका ने युविका की पीठ सहलाकर कहा, फिलहाल कुछ बता नहीं सकती, लेकिन अपनी फ्रेंड पर यकीन रखो, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। हाँ, तुम पर पूरा यकीन है, जानती हो ना यकीन किस पर नहीं है, युविका ने इशिका से अलग होकर कहा। फिर अचानक ही वो थोड़े रहस्यमय अंदाज में बोली, अच्छा ईशानी, क्या वो लोग तुम्हें अभी भी परेशान करते हैं? कौन से लोग? इशिका ने अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल करके पूछा, हालांकि मन ही मन उसे शक हो गया था कि जरूर कोई लोग थे जो ईशानी को तंग करते थे। एक बार ईशानी ने इसका जिक्र भी इशिका से किया था कि वो लोग उन दोनों बहनों को मारना चाहते हैं। इशिका अपने सवाल के जवाब के इंतजार में युविका की तरफ देख रही थी। ईशानी की एब्सेंस में शायद युविका से उसे कुछ पता चल सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपनी सर्जरी खत्म करके हॉस्पिटल से घर की तरफ निकल रही थी। उसने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया से निकाली कि तभी एक दूसरी गाड़ी आगे आई और उसका रास्ता रोक लिया था। ये क्या बदतमीजी है, अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आई और दूसरी गाड़ी की ड्राइविंग साइट की विंडो को नॉक किया। जैसे ही ड्राइविंग साइट की विंडो खुली, सामने मौजूद शख्स को देखकर अंजलि के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। फिलहाल के लिए इतना ही, आप यहाँ मेरी आईडी पर बाकी कहानी भी पढ़ सकते हैं। बाकी की कहानी कल या परसों से रेगुलर हो जाएगी, जिसमें रोजाना एक पार्ट आएंगे। आप पढ़कर देखिए, आपको अच्छी लगेगी। बाकी क्या लगता है, अंजलि के सामने कौन आ गया होगा? पढ़कर और डिटेल देखकर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।